ओम शांति, ओम शांति। मधुबन परमात्मा पिता की अवतरण भूमि, कर्तव्य भूमि, परिवर्तन भूमि, सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान, मम्मा बाबा ने, दादियों ने इस धरनी को ऐसे उपजाऊ बनाया है, तो ऐसे मान तपस्वी भूमि आप अब्बा के घर में सबसे पहले मैं आदरणीय दीदी जी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। खास आप सभी जगन्नाथ की धरनी से आए हो, है ना? ओडिशा की धरनी कौन सी धरनी मानी गई है? जगन्नाथ की धरनी से आए हो। क्यों आए हो? मधुबन की तपस्या, पांडव भवन की तपस्या करने के लिए। आप सभी जगन्नाथ की धरनी से आए हो। जगन्नाथ का रथ यात्रा चलती है तो क्या करते हैं? सबका अनुभव है ना, मुझे लगता है आप सब ने भी। जगन्नाथ की रथ यात्रा को आप सबने देखा होगा ना, जैसे ही वो रथ गुजरता है उसकी मिट्टी लेकर के सिर पे लगाते हैं, उस पे चलते, उस पे बैठते, उस पे लेटते हैं। क्या समझते हैं? ये रथ, यहाँ से रथ गुजरा है, इस रथ की मिट्टी पावन है। और आप जिस धरनी पे बैठे हुए हो तो ये कौन सी धरनी है? विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, उस जगतनाथ की चैतन्य धरनी। न जाने इस आंगन से कितनी बार ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा उनकी पदरामणि होकर के गुजरे होंगे। मधुबन का एक एक कण कण में उस जगतनाथ की खुशबू भरी हुई है, शक्ति भरी है, प्रेम भरा हुआ है। तो ऐसे महान तपस्या भूमि पे आप सभी पधारे हो। आपके जीवन का अगर सर्वश्रेष्ठ समय अगर है, सर्वश्रेष्ठ जीवन काल का, तो ये पांडव भवन की महातपस्या के लिए मिले हुए अनमोल घड़ियां हैं। तो इस अनमोल घड़ियों को एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। भट्टी का मतलब ही है कच्ची मिट्टी को पकाकर उसी मिट्टी से ईंट जब बन जाता है, एक सुंदर सी इमारत बनाई जाती है, एक सुंदर सा मंदिर बन जाता है, उस मंदिर के दर्शन के लिए सारे संसार से लोग आते हैं। तो ऐसे बाबा आप सबको तराशने के लिए विशेष निमंत्रण दे करके यहाँ बुलाए, ऐसा कहेंगे? आप सभी भाग्यशाली समझते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। सब लोग तरसते हैं पांडव भवन की भट्टी के लिए। आप सबको एक लॉटरी मिली हुई है। तो ऐसे भाग्यशाली आत्माएं आज ये जो भट्टी के तीन दिन हमें मिले हुए है, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकेंड हमारा व्यर्थ न जाए, इसका पूरा पूरा हम लाभ ले, इसी संकल्प को लेकर के तीन दिन की हमारी मौन तपस्या भट्टी रहेगी। और ऐसी तपस्या के लिए हमारे इस कार्य के लिए, इस भट्टी का आयोजन करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय श्रद्धेय कौन? शीलू दीदी जी बैठे हैं। तो शीलू दीदी जी इस यज्ञ के अनमोल धरोहर है, अनमोल रतन है, क्योंकि स्वयं भगवान ने इनको क्या किया, मम्मा और बाबा ने अपने हाथों से इनको तराशा है, ऐसे तराशा हुई। और माउंट आबू क्या है? हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस के शोकेस में कौन से शो पीस, कौन सी चीज रखी जाती है? स्पेशल जो शो पीस होते हैं, ऐसे शो पीस। तो हमने दीदी को पिछले 40 42 43 साल से देख रही हूँ, जैसे कि बाबा के वरदानों से पलने वाली और सब पर बाबा के वरदानों को लुटाने वाली ज्ञान सागर से निकली हुई चैतन्य ज्ञान गंगा, और न सिर्फ देश विदेशों में भी जा करके चैतन्य ज्ञान गंगा न जाने कितनी आत्माओं का संबंध पिता परमात्मा से जुड़वाने का काम किया। जब से टीवी के माध्यम से सेवाओं की शुरुआत हुई, हमने सबसे पहले टीवी में किसको देखा? दीदी को देखा। तो सेवाओं की शुरुआत, सोशल मीडिया की सेवाओं की शुरुआत दीदी के माध्यम से, एजुकेशन विंग से भी जुड़ करके दीदी ने सेवाएं की, स्पेशल दीदी का शिविर के माध्यम से, भट्टियों के माध्यम से हर आत्मा को पिता परमात्मा से जुड़वाने का कार्य करती ऐसे महान तपस्वी। बाबा ने दादियों को तराशा, दादियों ने ऐसे महान दीदियों को तराश कर आज हमारे बीच में सैंपल एग्जाम्पल है। तो हम सभी ऐसे आदरणीय श्रद्धेय दीदी जी से आज जो भट्टी का आयोजन हो रहा है, 3 दिन तपस्या जो चलेगी, उसका उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य को लेकर के हम इस तपस्या भट्टी करेंगे, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए, उसकी भी क्लासेस चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी हमारी आदरणीय श्रद्धेय बाबा के दिल तख्त नशीन ऐसे महान विभूति बाबा के सैंपल एग्जाम्पल शीलू दीदी से निवेदन करूंगी, इस भट्टी का लक्ष्य हम सबके बीच में रखें। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सर्वदादियाँ सर्वदादाएँ, एडवांस पार्टी की आत्माएँ, सर्व मधुबन निवासी, सर्व ब्राह्मण कुलभूषण, इन सब की तरफ से और मेरी तरफ से भी आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, ताली बजा सकते। हमारी राधा बहन ने बहुत सुंदर कहा कि आप सब कहाँ आए हैं, मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि है, बाप दादा की कर्म भूमि है, दादियों की तपस्या भूमि है, जहाँ से सारे विश्व में शांति की किरणें फैल रही है, ऐसी धरनी पर आप सभी आए हैं योग तपस्या करने। और आपको यह बैज मिला होगा एक माला के रूप में, जो आपको हर वक्त पहन कर रखना है। और इस बैज पर क्या लिखा हुआ है, मोहन तपस्या भट्टी, और इसकी क्या नाम क्या लिखा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अंतिम पुरुषार्थ, योग तपस्या भट्टी। तो अभी समय को देखते हुए हम चक्र के अंत में पहुंचे हैं। एक चक्र की समाप्ति दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है, और ऐसे समय पर जबकि ये परिवर्तन का युग है, तो हमें भी बाबा परिवर्तन करना सिखाते हैं। और आज ही बाबा ने मुरली में क्या कहा, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, भगवान आए हैं नई रचना रचने, जो ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। तो नई रचना माना एक पिता के बच्चे, शिव बाबा की संतान आत्मा रूप में भाई भाई और ब्रह्मा बाप की संतान होने के नाते आपस में भाई बहन ये पवित्रता धारण करने की बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई है। और इसी पवित्रता के बल से ही नई सृष्टि की स्थापना होती है, पवित्रता के बल से ही सतयुग आता है, स्वर्ग आता है, सुखधाम आता है। तो हम सब ने भी यह प्रतिज्ञा की है ना कि हम अपने जीवन को योगी और पवित्र बनाएंगे, है ना, सबकी ये प्रतिज्ञा है, हाथ उठाई जिन सबकी प्रतिज्ञा है, बहुत अच्छा। तो इसी प्रतिज्ञा के मुताबिक आप सब यहाँ तपस्या करने आए हैं। तो तपस्या किसे कहते हैं, तपस्या का अर्थ क्या है, तप करना, पकना, अग्नि में हर चीज पक जाती है, जैसी चीज उसी अनुसार अग्नि, और वो चीज पक जाती है, पक जाती है माना बदल जाती है, रूप रंग गुण सब कुछ बदल जाता है जैसे ही अग्नि में वो चीज पड़ती है। अनुभवी है ना सब, कटक शहर तो चांदी का शहर है, चांदी की कितनी सुंदर सुंदर चीजें वहां बनती है, सिल्वर नहीं बहुत बनता है, वही चीज सबको बांट देते भी हैं, सौगात भी वही देते हैं, लेकिन हमें तो चांदी से भी ऊपर जाना है, क्या बनना है, सोना बनना है। तो सोना, सच्चा सोना जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर वो पिघलता है, ऐसे नहीं पिघलता, लोहा तांबा चांदी वो पिघल जाएंगे, पर सोना सबसे ऊपर। तो सोने का जो पिघलने का टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। तो आत्मा जो सच्चा सोना है, अब उसने खाद पड़ गई है, बाबा कहते हैं, कभी बाबा हीरे से भेंट करते हैं, हीरे में भी दाग लग जाता है तो उसको तराशते हैं, और तराश तराश करके उसमें चमक लाते हैं। तो सोने में को भी गलाया जाता है, अग्नि में पकाया जाता है, तब उसकी खाद निकलती है। तो यहाँ भी आप सभी क्यों आए हो, तपस्या कर अपने आप को शुद्ध 24 कैरेट सोना बनाने, बेदाग हीरा बनाने, जो भी कमियां कमजोरियां डिफेक्ट्स कहो, कभी खामियां, ये सब बाबा जो शब्द कहते हैं, ये सब निकालने, एकदम शुद्ध पवित्र सच्चा सोना हीरा बनने, क्योंकि सतयुग में जाना है और उसके लिए यहाँ तप करने आए हो। तो तप माना पकना, तप माना परिवर्तन होना। तो आज से ये दृढ़ संकल्प कर लो कि जो भी मेरे अंदर कमियां कमजोरियां खामियां हैं, मैं सब यहाँ बाबा के इस यज्ञ में स्वाहा करके जाऊंगा या जाऊंगी। करेंगे ये प्रतिज्ञा, हाथ उठाओ, हाँ सब ये प्रतिज्ञा करना। और बाबा को रोज आपको पत्र लिखना है, तो पत्र में भी बाबा से ये प्रतिज्ञा करना, और बाबा के कमरे के बाहर लेटर टू बाबा लिखा है, चाहे झोपड़ी में वहां डाल देना, बस बाबा को मिल गया, और कोई नहीं पढ़ता है। और ये जरूर करना, तब सचमुच आप देखेंगे 3 दिन के अंदर ही आप में कितना परिवर्तन आता है। तो इस योग तपस्या भट्टी में हमें क्या लक्ष्य मिला, एक है लक्ष्य, दूसरा है उद्देश्य। तो लक्ष्य तो छोटे छोटे होते हैं, है ना, कोई भी बिजनेस होती है तो बिजनेस में लक्ष्य रखते हैं कि हमको पहले इस एक साल में इतना कमाना है, फिर आगे इतना इतना ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो वो छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं। लेकिन उद्देश्य उनका बहुत बड़ा होता है। उद्देश्य क्या होता है? देश की सेवा, देश को ऊंचा करना, है ना। कहीं भी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा लंबी होती है तो देखते जाते अभी बाकी कितना टाइम। रास्ते में माइलस्टोन्स आते हैं कि इतना 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 माइलेज पूरा हुआ, अभी इतना माइलेज बाकी है। तो जितना दूर है मंजिल तो उतना फिर स्पीड को फास्ट करते हैं, क्योंकि समय पर पहुंचना है मंजिल पर। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं समय और ही तेजी से भाग रहा है, तो हम तो और ही समय के रचयिता है और हम पीछे रह जाएंगे, ये तो शोभेगा नहीं रचयिता को। तो समय तो हमारी रचना है और समय बाबा से पूछ रहा है, बाबा कब तक? प्रकृति बाबा से पूछ रही है, बाबा कब तक? एडवांस पार्टी बाबा से पूछ रही है, बाबा कब तक? हाँ, बाबा से डेट मांगते हैं, हम कब अपना काम शुरू करें। और बाबा क्या करते हैं? बच्चों से डेट मांगते हैं। बच्चे आप कब तैयार हो जाएंगे? अपनी डेट बताओ। तो बच्चे कहते बाबा आप बताओ। अब पुरुषार्थ तो हमें करना है, बाबा को थोड़ी करना है, किसको करना है? हमें करना है। तो डेट हम बताएंगे या बाबा बताएगा? हाँ, भले कहेंगे कि ड्रामा अनुसार सब निश्चित है, लेकिन पर्दा खोलना है तो पर्दा खोलने वाले तो तैयार बैठे हैं। हाँ, पर्दा हटाएं और रस्सी खींचे, पर्दा खुल जाएगा। लेकिन जो एक्टर्स है वो तैयार ही नहीं है। तो एक्टर्स अगर तैयार नहीं होंगे तो पर्दा खोल सकते हैं? तो प्रकृति तो पर्दा खोलने लिए तैयार है, परंतु हम एक्टर्स तैयार नहीं हैं। इसीलिए सारा दोष किसका है? किसका दोष है? हा? हमारा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों से पूछते हैं। हमें पद पाना है, बाबा को पद नहीं पाना है, वो चक्र में आने वाले नहीं है, वो तो निष्काम सेवा करते हैं। हम बच्चों को बहुत बड़ी कामना देते हैं, बच्चे तुमको विश्व का मालिक बनना है। तो छोटे छोटे लक्ष्य बाबा देते हैं, उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। जब कोई आते हैं तो हमसे पूछते हैं ना, संस्था में आते हैं, सेंटर पर आते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? तो हम क्या जवाब देते हैं? लक्ष्मी नारायण के फोटो के पास ले जाकर क्या कहते हैं? हमारा ये उद्देश्य है, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इतना ऊंचा उद्देश्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बाबा बताते हैं। कौन सा पहला लक्ष्य बताते हैं? पहला बाबा ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? बच्चों को पहला कदम यही बताया, बच्चे देही अभिमानी बनो। ये देही अभिमानी बनना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। आधा कल्प का देह अभिमान है, जिस आधा कल्प के देह अभिमान में हम इतने फंसे हुए हैं, जो विकारों के वशीभूत हो गए। अब इनकी जड़ है देह अभिमान, सभी पापों की जड़ भी देह अभिमान है, सभी दुखों की जड़ भी देह अभिमान है, सभी विकारों की जड़ भी देह अभिमान है। और इसलिए बाबा कहते जड़ से इसको खत्म करना है, ऐसे नहीं एक एक विकार को अलग अलग तरीके से खत्म करना है। ये सब ऐसे जुड़वे भाई हैं जो अलग, एक से नहीं, एक के जाने से एक ऐसे नहीं कि एक एक करके जाएंगे तो सब एक साथ, और नहीं जाएंगे तो सारे के सारे है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने तो काम को जीत लिया है, पर क्रोध अभी तक जीता नहीं है, लोभ अभी तक जीता नहीं है, चलो मोह को जीत लिया, पर केवल काम और मोह को जीता और क्रोध और लोभ और अहंकार को नहीं जीता तो कहेंगे क्या माया जीत? कहेंगे नहीं। फिर चलो मोटे मोटे रूप से तो इन विकारों को जीता, फिर इनके बाल बच्चे, ईर्षा, द्वेष, नफरत, वैर, न क्या क्या, कितने उसके बाल बच्चे। तो वो अगर छोटे बाल बच्चे भी होंगे ना तो माँ बाप आ जाते हैं। हाँ, बच्चे जाओगे तो माँ बाप आ जाते हैं ना, पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहला कदम है इस यात्रा में, वो है देही अभिमानी बनना। और जब देही अभिमानी बनते हैं तो ये विकार अपने आप छटते जाते छटते जाते। इसलिए बाबा हमें बहुत ऊंचा ऊंचे उद्देश्य के लिए पहला कदम यही बताते। ब्रह्मा बाबा को भी यही पहला कदम बताया, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। और हर मुरली में बाबा आत्मा की बात जरूर करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी पहला पुरुषार्थ यही किया, यशोदा आत्मा है बाबा की लौकिक युगल, राधिका आत्मा है बाबा की लौकिक बहू। तो उनको जब ये बात दीवार पर लिख दी, राधिका आत्मा है, वो पढ़ेगी तो उसको भी आएगा मैं आत्मा हूँ, तो बाबा को उसी नज़र से देखेंगे कि ये भी आत्मा है। तो सब आत्मा ही है, आत्मा ही है, आत्मा है। ये बाबा ने सबसे पहला पाठ पढ़ाया। तो ये पाठ अगर हमारा पक्का हो जाता है फिर तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है, पुरुषार्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यही पाठ पक्का नहीं होता तभी तो क्या बच्चे कंप्लेन करते हैं, बाबा व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि देह अभिमान है। फिर देह अभिमान को जीतने के साथ साथ फिर दूसरा कदम कौन सा है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना, ये दूसरा कदम है। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा, गीता में आता है, पहले तो आत्मा का ही पाठ पढ़ाया, इन सबको आत्मा देखो, ये बड़े बड़े तुम्हारे गुरु गुसाई मामा चाचा काका, इन सबको आत्मा देखो, ये आत्मा देखो। तो आत्मा देखने से जो उनके प्रति चाहे, क्योंकि शरीर देखने से विकार आते हैं तो आत्मा देखने से विकार नहीं आएंगे। फिर दूसरा कदम क्या बताया अर्जुन को? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। देह के साथ फिर देह के धर्मों को, देह के संबंधों को, सबको भूलो और मेरी शरण में आओ। ये बहुत बड़ा कदम है। तो भगवानों वाच जब हम ये बातें सुनते हैं तो कई बच्चे समझते तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बाबा कहते हैं मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? मेहनत कब लगती है? जब मोहब्बत नहीं है, है ना? अगर मोहब्बत है तो मेहनत लगती है। अगर किसी का किसी से प्यार हो गया, अब घर वाले तो शादी के लिए छुट्टी नहीं देते, बस इतना प्यार हो गया कि उसके बिना रह ही नहीं सकते, तो क्या करते हैं वो? हाँ, युक्ति रचते भाग जाते हैं ना। आजकल दुनिया में यही हाल है, भाग जाते हैं। अब कहाँ चले गए, माँ बाप ढूंढते रहे तो दे तो वो घर बार परिवार माँ बाप सबको ऐसे भूल जाते हैं, क्योंकि एक से प्यार है तो वो छोड़ने लिए भी तैयार हो जाते हैं। परंतु वो तो बाबा कहते हैं दुख देह अभिमान के वश है, और हम तो भगवान से प्यार करते हैं। भगवान से प्यार के लिए लोक लाज कुल मर्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, उसको छोड़ना। मीराबाई ने क्या किया? लोक लाज कुल मर्यादा सबको तिलांजलि दे दी। हाँ, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, सारे भजन उसके इसी पर है। तो क्या हम भी ऐसे तैयार हैं कि मेरा तो एक दूसरा न कोई? और फिर जो बाबा ने इसके बाद जो नियम बाबा ने बताए हैं, उनकी इतनी दृढ़ पालना हो, उनको इतना पालन करें, क्योंकि हम सच्चे ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए। तो ब्रह्मा मुख वंशावली माना सर्वोत्तम रचना भगवान की, और पहली रचना भगवान की। पहली रचना ब्रह्मा मुख से पैदा होना, ये सबसे पहली रचना बनना है। और पहली रचना बनते ही हम हमारी दृष्टि वृत्ति सारी बदल जाती है। तो ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मणों की जो मर्यादाएं हैं वो बाबा हमें सिखाते हैं। दुनिया में देखो कितने जो लौकिक ब्राह्मण हैं उनको कितना नशा होता है, मैं ब्राह्मण हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, सबको ये कहेंगे मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, तो ब्राह्मण होने का नशा है। पर बाबा कहते वो तो कुख वंशावली है और तुम बच्चे मुख वंशावली। कुख वंशावली तो फिर भी विकार की पैदाइश है, हम तो मुख की पैदाइश है। भले वो ब्राह्मण लौकिक ये समझते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन सच्चे ब्राह्मण सचमुच ब्रह्मा के मुख से कैसे पैदा हुए, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से कहा उसको धारण किया और धारण करते ही ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए, नया जन्म हो गया। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं। द्विज तो द्विज का मतलब क्या है, एक ही जीवन में दो जन्म, एक था वो शूद्र का जन्म और दूसरा है ब्राह्मण का जन्म। ये जन्म, ये जो जनेऊ पहनते हैं ये भी पवित्रता की निशानी है। सिख धर्म में कंगन डालते हैं ये भी पवित्रता की निशानी है। बहन भाई को राखी बांधती है ये भी पवित्रता की निशानी है। तो इसलिए दृष्टि वृत्ति स्मृति स्थिति सब पवित्र बन जाता है। तो ब्राह्मण बच्चे अगर हम बन गए तो फिर इसके बाद आगे कौन सा लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य ब्राह्मण से आगे क्या बनना है, अभी आगे क्या बनना है। ब्राह्मण तो बन गए, सब कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, बीके बीके है नाम लिखते हैं। तो परंतु इसके आगे क्या बनना है, फरिश्ता बनना है। अब ये आगे की मंजिल है, आगे का हमारा लक्ष्य है। तो फरिश्ता कैसे बनेंगे, बाबा ने उस दिन भी फरिश्ता की डेफिनेशन बताई था ना, संडे का संडे की मुरली, बाबा ने फरिश्तापन की कितनी बातें बताई। फरिश्ता माना डबल लाइट, बिल्कुल हल्का, और लाइट का शरीर बिल्कुल हल्का हो, जरा भी बोझ सिर पर ना हो, डबल लाइट। हवाई जहाज जो उड़ता है ना उसका जो फ्यूल होता है ना पेट्रोल, वो बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। ये नहीं जो गाड़ी में पड़ता है, डीजल तो देखो कितना भारी होगा लेकिन पेट्रोल उससे हल्का है। लेकिन हवाई जहाज का पेट्रोल गाड़ी तो गाड़ी का पेट्रोल से जैसा थोड़ी होता है, बहुत हल्का बहुत हल्का। हम गए थे आसाम, तो आसाम में डिब्रूगढ़ है, वहाँ पर रिफाइनरीज है बहुत आसाम में। तो रिफाइनर एक रिफाइनरी में हम गए क्योंकि क्रूड ऑयल आता है, क्रूड बहुत काला भारी ऐसा आता है गंदा पहला, तो वो पहला दिखाते देखो ये तेल धरती से निकलता है, तो धरती से निकलता है तो फिर उसमें वो रिफाइन होता जाता है, रिफाइन होता जाता है। कैसे रिफाइन होता है, तो पहले जो गंद निकलता है ना वो उसे वो भी काम का होता है, ऐसा नहीं कि काम का नहीं होता है। तो क्या होता है उसे, ये जो रोड का जो टार बनता है ना ये क्या बोलते हैं डामर, वो डामर निकलता है क्योंकि धरती से निकलता है ना, तो वो डामर बन जाता है और वो डामर वो रोड बनाने के काम आता है। फिर डामर के बाद दूसरा आगे जाते हैं तो फिर थोड़ा और कुछ तो कचरा निकला, तो फिर वो जो चीज बन जो चीज है वो उसे वैक्स, उसको वैक्स कहते हैं, ये क्या बोलते हैं मोम, मोम बनता है। और वो मोम की इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं, वैक्स की कैंडल्स मोमबत्तियां, देखा है किसने रिफाइनरी, आसाम के रिफाइनरी कोई है वहाँ नहीं देखा, उड़ीसा के हैं आप, एक हाथ उठा रहा है, हाँ बहुत अच्छा। तो वो हमको दिखाने ले गए थे एक एक चीज क्या क्या उसमें से निकलती है वो दिखाई, और कैसे सब काम आता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, सब काम आता है। और फिर अभी इतना कहाँ दिखाएंगे, बोला 14 या 16 चीजें निकलती है और वो सब काम की होती है। और लास्ट में जाकर के जो फाइनल रिफाइन होता है ना, वो हवाई जहाज का पेट्रोल, हवाई जहाज का पेट्रोल, क्योंकि सब कचरा निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। तो अभी हमें भी फरिश्ता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सारा कचरा साफ, सब कचरा साफ, एकदम शुद्ध होना है। तो चाहे सोने का मिसाल लो, चाहे डायमंड हीरे का मिसाल लो, चाहे अभी जो आत्माएं इतनी मैली हो गई है उसको शुद्ध करने का मिसाल लो। तो ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो डबल रिफाइंड, सिंगल रिफाइंड भी नहीं, क्या डबल रिफाइंड। तो तेल भी खाते ना, डबल रिफाइंड तो इतना वो दूसरे प्रकार का होता है। तो बाबा भी हमें डबल रिफाइंड बनाते हैं, इतना शुद्ध हमें बना देते हैं कि जरा भी कुछ भी बोझ न हो, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। ऐसे नहीं कि अशुद्ध संकल्प तो मुझे आते नहीं है, मैं किसी को दुख तो देता नहीं हूँ, रोज चार्ट में लिखते मैं ये नहीं करता ये नहीं करता। अमृत वेला भी उठा, लेकिन अमृत वेला उठा पर कितना योग लगा? उठना तो बड़ी बात नहीं है पर कितना योग लगा। मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, फिर बाबा कहते दुख नहीं दिया तो सुख कितना दिया। तो अपनी चेकिंग जो हर कदम कदम पर करनी है वो कब होगी? जब बाबा कहते अंतर्मुखी होंगे। गीत है ना बहुत सुंदर, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। फिर बाबा कहते चलो इस जन्म का तो बाबा को लिख के दो, पिछले जन्मों का तो पता नहीं है पर कम से कम इस जन्म का तो पता है ना क्या क्या पाप किए हैं। तीन चार साल की उम्र से यादाश्त आशक्ति आ जाती है कि हम कैसे थे छो बचपन में। तो बाबा कहते सब पता है, मैंने क्या क्या किया सब याद है। तो वो बाबा को लिख के दो तो बाबा आधा माफ कर देंगे। तो इसी प्रकार ये शुद्ध होने के तरीके हैं, बाबा शुद्ध होने के तरीके बताते हैं। अंतर्मुखी बनो, जब जब समय मिले एकाग्रचित हो जाओ, जैसी परिस्थिति आई उस परिस्थिति के वश नहीं होना है, ड्रामा सदा याद रखना है। तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं आए, नेगेटिव तो आए ही नहीं, और व्यर्थ संकल्प इतने तक नहीं आए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं आए। जो बाबा कहते हैं संकल्प तो क्या स्वप्न में भी नहीं आए, इतने हद तक बाबा हमारी पवित्रता देखते हैं। स्वप्न तो हमारे वश में नहीं होता है ना, चलो संकल्प तो फिर भी हमारे वश में होते हैं। हमको वो संकल्प नहीं करना है तो मैं मन को बुद्धि मन को कहेगी नहीं करना नहीं, बाबा ने उसकी भी युक्ति बता दी, बोलो नो नो नॉट नॉट और डॉट, ये नॉट और डॉट लगा दिया तो व्यर्थ संकल्प खत्म। गाड़ी के अंदर भी ब्रेक होती है ना, तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो व्यर्थ संकल्प इतने इतने भागते रहते हैं उसको नॉट और डॉट लगा करके वो ब्रेक लगानी है। पर वो क्यों आते हैं? क्योंकि फिर भी वही देह अभिमान है, व्यर्थ संकल्प काहे के आते हैं? सोचो तो, या तो कोई व्यक्ति याद आएगा, अब व्यक्ति याद आए माना थोड़ा तो अटैचमेंट है, कोई वस्तु याद आई माना जरूर कोई चीज का लोभ है, कोई वैभव याद आया ये चाहिए 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 इच्छाएं हैं। तो व्यक्ति याद आया, वस्तु याद आई, वैभव याद आया, या कोई स्थान याद आया, या कोई परिस्थिति याद आ गई, कुछ भी याद आया जो इस संसार का है, मानो वो व्यर्थ संकल्प के खाते में जाएगा। हाँ आवश्यक है तो और बात है, लेकिन वो व्यर्थ के खाते में जाएगा। जब वो कब जाता है? भले वो आवश्यक भी होगा लेकिन वो समय अनुकूल नहीं है तो वो व्यर्थ के खाते में जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ आए हो, अभी आप घर की चिंता करेंगे, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, पता नहीं वो आई होगी नहीं आई होगी, मेरे बिजनेस का क्या हुआ होगा। अब यहाँ बैठे कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ तो हम आपको कहेंगे 3 दिन मोबाइल भी नहीं चलाओ, मोबाइल भी नहीं चलाओ। 3 माह हम कहते ये नहीं होना चाहिए, एक मुख का मौन होना, मुख नहीं ज़्यादा चलाना है, मन को भी ज़्यादा नहीं चलाना है और मोबाइल को भी नहीं चलाना है। तो मुख मौन और मुख, ये मन और मोबाइल, ये 3 को आपको फुल वो बंद कर देना है। लेकिन अगर आया वो मन में, तो व्यक्ति वस्तु वैभव कोई घटना कोई स्थान या कुछ भी कोई परिस्थिति, माना बाबा कहते आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, अब कर सक नहीं सकते हो तो क्यों याद करो। हाँ, मुझे याद आता है एक बार एक विदेशी बहन दादी जानकी से मिलने आई, तो बड़ी उदास चेहरा, और वो जाने का दिन था उसका, जा रही थी तो दादी से छुट्टी लेने आई, तो बड़ा उदास चेहरा था। नहीं तो मधुबन में रही तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना, बाबा से शक्ति भर के जा रही है, पर बड़ा उदास था। और 15 दिन रही मधुबन में, लेकिन दादी से एक दिन भी नहीं मिली। हाँ, वो क्योंकि मैं ट्रांसलेशन करती थी, मैं लेके जाती थी दादी के पास, तो एक दिन भी वो मिली नहीं। तो जब दादी ने वो मिली उनसे, दादी ने उनसे पूछा आप आई कब, तो कहा दादी 15 दिन हो गया। अरे 15 दिन हो गया आपसे, आप मिली नहीं मेरे से। तो कहा दादी मुझे लगा आप बिजी होंगे। तो बिजी होंगे इसीलिए, दादी कहती है मैं आप लोगों से ही मैं ही तो बिजी होती हूँ, और किसने बिजी होती हूँ, आप लोगों में ही आपसे ही मिलते हैं, आप लोगों से तो उसी में बिजी होते, कोई और थोड़ी कोई मेरा काम है, मुझे तो बाबा के बच्चों से ही मिलना है, तो ये इसी में बिजी होते हैं, तो ऐसे कैसे सोच लिया मैं बिजी होंगी। ये भी तो एक बहाना हो गया ना, अगर दादी से प्यार है तो फटाफट आना चाहिए ना, दादी तो सबसे मिलती है। तो चलो अभी और क्या कहेंगे, अब जाने का दिन है। तो दादी ने कहा चेहरा उदास क्यों है, तो कहती है दादी मुझे वो अभी घर जाऊंगी ना, तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स ही हमको बहुत याद आए, अब मैं घर जाऊंगी तो पता नहीं फिर वो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो दादी तो उसको देख के हैरान हो गई, दादी ने कहा तो 15 दिन यहाँ क्या किया, 15 दिन वो प्रॉब्लम से याद किए, और प्रॉब्लम से याद किए फिर वही प्रॉब्लम में ही जाओगे, यहाँ तो तुम शक्ति भरने आई हो ना। हाँ, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल डालना है ना, अब पेट्रोल डालो ही नहीं बस ऐसे ही खड़ी रही गाड़ी, तो पेट्रोल मिलेगा क्या। सूरज के आगे जाते हैं तो रोशनी लेनी है ना, दरवाजे बंद करके बैठेंगे तो सूरज की रोशनी कैसे लेंगे, तो लेना होता है ना, परंतु अगर दरवाजे ही बंद है तो कहाँ लेंगे, ले पाएंगे। तो अगर मन का दरवाजा ही बंद है तो बाबा से शक्ति भी कैसे ले सकेंगे। तो दादी ने उसको कहा कि यहाँ आपने 15 दिन क्या किया, तो कहा बस दादी वही सोच चल रहा था, वही सोच चल रहा था। तो दादी ने कहा यहाँ तो कम से कम शक्ति भरती, क्योंकि अगर वो शक्ति भरती तो इतनी तुम्हारे में शक्ति आती जो उस वहां की परिस्थिति को आप बहुत सहज पार कर लेती। अब यहां से शक्ति भरी नहीं तो वही बातें सामने आएगी, वही बातें में ही फंसी रहोगी। यहाँ मधुबन में किस लिए आते हैं, शक्ति भरने। सागर के किनारे क्यों जाते हैं बादल, पानी भरने, तब जाके बरसेंगे। पावर हाउस से क्यों आप अपना मोबाइल का वो जो ये है ना चार्जर लगाते हो, चार्ज करने लिए। तो ये मधुबन भी तो पावर हाउस है ना, ये भी तो सागर का कंठा है, यहाँ आप अपने अंदर शक्ति भरने आए हो। तो अभी शक्ति भरी नहीं और खाली खाली रही और वही चिंतन चलता रहा, तो फिर वापस जाओगे तो वैसे के वैसे। इतना खर्चा किया, इतना दूर से आए, इतना समय दिया और गए तो खाली। तो इसीलिए हाँ, ये बहुत बड़ी सीख उसको मिली। और सचमुच फिर जब वापस गई तो फिर उसने, दादी ने उसको कहा कि अब ये सारी चिंताएं तुम बाबा को लिख करके बाबा की वो लेटर बॉक्स में डाल दो और बाबा से माफी मांगो। बाबा से अभी एक दिन और है, तुम इतनी शक्ति भरो एक दिन में भी तुम पूरे साल की कमाई कर सको, जो आप अगले साल आप आ सको, फिर वो शक्ति वहाँ यूज करो। तो कहने का भाव क्या है, आप भी यहाँ आए हो शक्ति भरने, इतना खर्चा करके आए हो, कितना दूर से आए हो। हमने तो देखा कितनी जो आज पहुंचे हैं ट्रेन से डायरेक्ट, कितना समय लगा, दो दिन लगे कि नहीं, जो आज पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा आज पहुंचे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे थे, ये तो पहले आ गए थे, आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे तो हम उद्घाटन करेंगे। तो देखो आप आए, परंतु कितना समय लगा, दो दिन दो रात, कितना हाँ जी, 40 आवर्स ना, 40 घंटा। तो 40 घंटा माना कितना दिन, दो दिन। तो देखो 40 घंटा 24, 48 आवर्स, चलो तो दिन होता है तो 8 घंटा कम, 40 घंटा कोई कम है क्या? तो आप लोगों को जी हाँ 8-10 घंटा और भी हो जाता है ना, हाँ तो 48 घंटा तो हो ही जाता है। लेकिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, इतनी हिम्मत करके इतना दूर से आप पहुंचे हो, तो पूरा पूरा लाभ लेना, हाँ आपकी हिम्मत को मुबारक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा। तो इसीलिए तो पहले तो हम शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण कैसे बने वो बताया ना, शुद्ध भोजन खाया और शुद्ध संग किया, रोज मुरली पढ़ते हैं, अमृत वेले उठते हैं, तो ये सब ब्राह्मण बनने के लक्षण है, ब्राह्मण के लक्षण। फिर ब्राह्मण बनने के बाद क्योंकि बाबा से प्यार जुटा, भी प्यार जुटा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, देही अभिमानी बने, फिर सर्वसंबंध बाबा से, फिर फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता मतलब इतना हल्का, फरिश्तों के पैर धरती पर नहीं पड़ते, वो ऐसे हल्के ऐसे उड़ते रहते हैं। हमने देखा विदेशों में बैले डांस होती है ना, बैले डांस कर तो कैसे चलते हैं, अपने वो ये जो ये ना पैरों की उंगलियां उस पर चलते हैं, फिर भी वो मनुष्य है तो पैरों की उंगलियों पर चलते, ऐसे बैले डांस होती है। लेकिन फरिश्ता तो वो भी नहीं, पैर तो धरती पर है ही नहीं, इतने हल्के। तो इतने ही डबल लाइट होके जाना है, सारा बोझ बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं मुझे दे दो बोझ, लेकिन बच्चे बाबा को बोझ देते नहीं है, क्यों नहीं देते हैं भाई बोझ, नहीं 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 बाबा मैं संभाल लूंगा, बाबा आपको बोझ क्यों दे, आपको तो दुनिया का बोझ है, मेरा भी मेरा बोझ लेके तो बोझ हो जाएगा बाबा को, अब दुनिया का बोझ लेने वाला मेरा बोझ उसको भारी लगेगा क्या? तो हम कई बार मिसाल देखते हैं ना, अभी आप लोग जो आए आए होंगे तो कितने आप 4-5-6 दिन के वस्त्र लाए होंगे या जो भी सामान लाए होंगे, तो कितना लेकर आए, तो अभी इतना तो उठा नहीं सकेंगे, तो जैसे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कूली करते हैं, आजकल तो वो रेडी है तो सहज होता है वो रखना, पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था, तो कूली कहता था मेरे को दो, तो हम तो देखते थे अभी एक पेटी उठाई, दूसरी पेटी उठाई, तीसरी पेटी उठाई, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, हाँ फिर और रखो और रखो, तो हम सोचते भाई इतना कैसे उठाएगा, इतना सारा कैसे उठाएगा सामान, कहता डालो रखो रखो डालो, और उस चलो जबरदस्ती कहता है डालो डालो दे दो दे दो दे दो, और हम डर डर के उसको देते तो हैं, चलो एक थैला तो हम लेते हैं, परंतु उसको इतना बोझ दिया और वो कैसे जाता है, दौड़ दौड़ के जाता है, इतना इक्विलिब्रियम बना दिया ना, बैलेंस बना दिया, तो वो टांगे मजबूत है तो दौड़ के जाता है, और हम एक थैला भी लेते ऐसे करते जाते और वो कुली कितना दौड़ के जाता है। तो बाबा भी कहते हैं ना, ये बोझ क्यों तुम उठाते हो, दे दो बाबा आप संभालो, और देखो बाबा को बोझ दिया, बाबा कितना हल्का कर देता है, पर हिम्मत रखनी है, बुद्धि फंसे नहीं उसने, मेरा इसलिए बाबा मेरा कहते, बाबा कहते मेरा नहीं को, अगर मेरा है तो बस एक बाबा है, मैं हूं तो एक आत्मा हूं। तो ये बाबा क्यों कहते था कि बोझ बाबा को दे दो, तो बोझ बाबा को दिया, बाबा आप संभालो। और समय पर बाबा याद आए, और कोई याद ना आए, कोई भी देहधारी याद ना आए, देहधारी याद आया माना हिम्मतहीन हो गए, बोझ उठा लिया, बाबा भूल गया। तो याद आए तो मदद मिलेगी ना, याद ही नहीं करेंगे तो मदद भी कैसे मिलेगी। अगर देहधारी व्यक्तियों इसकी उसको याद करेंगे, बाबा को याद ही नहीं किया तो मदद भी नहीं मिलेगी, है ना। कई इस पर कहानियां शास्त्रों में, महाभारत में तो इस पर कहानी पूरी भरी पड़ी है। को ये पांडवों ने तो जब इतना सारा किया, वो ताश खेला, चौपड़ खेला, ये खेला, जुआ खेली, ये सब किया, लेकिन उसमें श्री कृष्ण को याद ही नहीं किया। कौरव फिर भी होशियार निकले, उन्होंने कम से कम वो शकुनी को बिठा दिया। शकुनी होशियार था, कौरवों को नहीं आता था, लेकिन शकुनी को करने लिया। तो अगर पांडव भी अगर श्री कृष्ण को बुला लेते होते तो वो जीत जाते, लेकिन उनको बुलाया नहीं, उनसे छिप छिप करके किया, तो भगवान कैसे आएगा। इसलिए कौरव जीत गए। और द्रौपदी ने पहले तो द्रौपदी भी भूल गई, परंतु जब अंत में भगवान को याद किया तो भगवान की मदद मिली उनको। तभी तो प्रश्न उठा ना कि भाई कौरव पांडवों को भगवान ने मदद क्यों नहीं की, क्योंकि उन्होंने याद ही नहीं किया। द्रौपदी ने याद किया, वो भी लास्ट में जब बिल्कुल लाज लुटी गई तो अंत में याद किया। अगर पहले याद करती होती तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी करने की। याद किया, देखो बाबा की कैसी मदद मिलती है। आप सबने बाबा की मदद का अनुभव बहुत किया होगा। मैं एक मिसाल आपको देती हूँ। मैं श्रीलंका गई थी, श्रीलंका में मना काफ़ी प्रोग्राम्स थे, तो फिर जब मैं वापस जा रही थी एयरपोर्ट पर तो फ्लाइट के लिए, तो एक माता अपनी गाड़ी में हमको ले चली, क्योंकि वो राइड पकड़नी थी। तो अपना अनुभव सुना रही थी, जो मुझे लेके जा रही थी एयरपोर्ट, तो वो अनुभव अपना सुना रही थी कि बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है। मैंने कहा कैसे नया जीवन दिया, क्या हुआ। तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि वो कुछ साल पहले इंडोनेशिया में भूकंप आया था सागर के नीचे, और वो भूकंप इतना ज़बरदस्त था कि सुनामी आ गया, और वो सुनामी दूर दूर तक गया, थाईलैंड गया और श्रीलंका भी आया। तो श्रीलंका तक वो सुनामी का असर हुआ। तो उस समय वो सागर के किनारे पर टहल रही थी अपनी दो सहेलियों के साथ, जैसे सागर के किनारे टहलते हैं ना, तो वो टहलने गए थे, वॉकिंग कर रहे थे, तो अचानक सुनामी आ गया, और इतनी जोर से लहर थी। वो अपना अनुभव सुना रही थी, और एकदम हम तीन बहनें थी गए, तो हम तीनों ही जैसे उस वो लहर में वो पानी में चली गई। तो उसी समय मैंने कहा बाबा, जोर से कहा बाबा, और कैसे कहाँ चमत्कार हो गया कि एक ऐसी लहर आई, जो वो लहर उसमें मैं ही थी, और वो एकदम वो लहर मेरे को किनारे पर छोड़ दिया और मैं बच गई, और वो दो बहनें बह गई। अब आप बताओ, बाबा कहा और बाबा ने उसको जैसे गोद में उठा लिया। तो वो अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं तो समझती हूँ कि उसके बाद ये जो मेरा जीवन मिला है ये बाबा की सेवा के लिए ही है, नहीं तो मैं भी खत्म हो जाती। तो बस बाबा याद किया। छोटे बच्चे होते हैं मम्मी, हाँ ये कहते कोई कष्ट हुआ तो मम्मी, और हम क्या कहते बाबा। फिर खाली बाबा भी नहीं, वाह बाबा, हाय बाबा नहीं, हाय बाबा नहीं, क्या कहना है, वाह बाबा वाह, हाँ वाह वाह, हर वक्त वाह वाह कहो। हाँ मुझे ऐसे अनुभव लगता है कि जब बाबा अव्यक्त वाणियाँ चली, तो लास्ट की जो सालों की एक दो साल की वाणियाँ चली, उसमें जैसे गुलजार दादी का पार्ट भी थोड़ा थोड़ा मिक्स होने लगा, और वो अंतिम जो मुरलियाँ थी अव्यक्त बाप दादा की, वो मुरलियों में एक मुरली तो इतनी चली, वाह 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 वाह, कम से कम 25 बार वो लास्ट की मुरलियाँ, उसमें 25 बार गिनती किया किसने, बाबा वाह 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 बाबा वाह वाह वाह, कितनी बार वाह 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 बाबा ने किया। तो मुझे उसी समय एक इशारा लगा कि अभी ये ड्रामा बदलने वाला है, ये अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी पूरा होने वाला है, क्योंकि बाबा हमें पहले से ही वार्निंग दे रहे कि ये पार्ट भी पूरा होगा, तो इसको भी आप वाह वाह करके देखना है, वाह वाह करना है, वाह वाह करना है। तो कुछ भी होता रहे उसमें वाह वाह करना है, वाह वाह करना माना उसका कोई दुख न हो, क्योंकि सब ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा अव्यक्त हुए, मम्मा अव्यक्त हुई, सब अव्यक्त हुए, कितने दादियां अव्यक्त हुई, लेकिन जैसे ही अव्यक्त हुए बाबा की सेवा और बढ़ गई, और बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं, और वो कैसे वतन से सेवा कर रहे हैं। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो एकदम शॉक लगा सभी को, और इतनी यंग एज में 48 इयर्स की थी वो, वेरी यंग, तो 48 साल की केवल थी, लेकिन कैंसर हुआ, मतलब उस समय तो इतना इलाज भी नहीं था, और शरीर छोड़ा तो सब इतने हैरान हुए। मैं उस समय थी 65 में, मैं तो 60 में ज्ञान में आई हूँ, 1960 में, तब मैं 12 साल की थी। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो सबके मन में आया, क्योंकि बाबा यही कहते थे कि हम सब साथ रहेंगे साथ चलेंगे, साथ रहेंगे साथ चलेंगे, यज्ञ में साथ में थे तो बाबा यही कहते थे, बच्चे हम सब साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो दादियों ने उस समय क्या सोच लिया कि कोई शरीर नहीं छोड़ेगा सब साथ ही रहेंगे और साथ ही चलेंगे, तो कभी कोई शरीर छोड़ेगा ये तो संकल्प भी नहीं था, कुछ भी सोच नहीं था। और चलो छोटे मोटे जो थोड़े बहुत थे वो कोई गए तो उनका नहीं शौक लगा, लेकिन जब मम्मा गई तो उसका बहुत शौक लगा, सभी भाई बहनों को बहुत मम्मा में मोह था। लेकिन बाबा ने कैसे उस बात को बदल दिया, पहले कैसे बदला, बाबा ने ये कह दिया कि ये तुम्हारी बड़ी माँ है, वो तो बाबा की एडॉप्टेड बच्ची थी, लेकिन माँ तो वास्तव में ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा, तो माँ ये हो गई, ये ब्रह्मा है, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तो अभी इस बड़ी माँ और बाप और शिव बाप, हाँ, तो ये मात पिता है, माना उस अभी मम्मा को भूलो। परंतु संदेशियों ने जो संदेश भी सुनाए, बाबा का वो इशारा दिया कि कैसे अब ये ड्रामा किस प्रकार बदलेगा, और अब बाबा का इशारा था कि अभी एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी मम्मा, ये संदेश आया। तो क्योंकि तब तक एडवांस पार्टी का नाम नहीं था, कुछ किसी को पता भी नहीं था एडवांस पार्टी कोई होती है, लेकिन मम्मा के देह त्याग के बाद जो संदेशी ले आए उसमें ये पहला संदेश था कि अभी एडवांस पार्टी बाबा ने खोली है, और ये एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी, माना अभी जो मुख्य दादियां हैं वो सब जाएंगे, बाबा भी जाएंगे, और ब्रह्मा बाबा ने भी फिर आखिरी जो एक साल था उसमें बाबा की जो मुरलियां आप देखेंगे, बाबा यही कहते बच्चे ये भी चला जाएगा ना, ये भी इतना बूढ़ा 93 वर्ष का था बाबा, बाबा ने कहा ये भी नहीं होगा, ये भी शरीर छोड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ये अनुभव तो पता था कि मैं फरिश्ता बनने वाला हूँ। गुलजार दादी ने उनको पहले ही बता दिया था वतन से कि कैसे आप साकार से अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे, तो बाबा यही कहते थे हाँ बच्चे ये भी अव्यक्त बन जाएंगे, ये भी अव्यक्त बन जाएंगे, वतनवासी बनेंगे, पर तुम्हें सारे विश्व को शांति का दान देना है। और बाबा कैसे उपराम होते गए, उपराम होते गए, मम्मा भी उपराम होती गई, पर ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए तो भी एक शौक था, मुझे ही कितना शौक लगा, मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव क्या अनुभव था, कि तब शनिवार का दिन था, शनिवार का दिन था जब बाबा व्यक्त हुए रात को 9:45 लगभग। तो हम तो रोज सेंटर पर जाते थे, कॉलेज पढ़ते थे, हम सेंटर पर रोज जाते थे और फिर वापस घर जाते थे 8:00 के लगभग घर जाते थे। तो 8:00 तो मैं घर चली गई तो मुझे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगले दिन जब मैं गई तो संडे का दिन था और संडे का दिन तो बहुत भाई बहने आते हैं, भोग भी लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब मैं सेंटर पर गई तो देखा सुनसान, अभी सब कहाँ चले गए, बस सब जो भी आए थे सब योग में बैठे। बॉम्बे की बात है, मैं मुंबई की हूँ, मुंबई के सेंटर पर सब एकदम शांत, कोई कुछ नहीं, कोई चहलचल नहीं, कोई किचन में कुछ नहीं, भोग बनना है कुछ भी नहीं। तो मैं तो आश्चर्य का, ये क्या हो गया। तो मैंने एक माता थी उससे मैंने पूछा, कान में पूछा, क्या हो गया, ये सब इतना साइलेंस क्यों है। तो कहा कल रात को बाबा ने शरीर छोड़ा है। मैंने कहा बाबा ने शरीर छोड़ा, मेरे तो होश ही उड़ गए सचमुच, मेरी टांगे कांपने लगी और मुझे ऐसे लगा जैसे बस बाबा गए मना विनाश खत्म, ड्रामा खत्म, ऐसे एकदम मेरी सब टांगे कांपने लगी। परंतु मुझे उस समय याद आया क्योंकि बाबा ने साकार में मुझे पत्र लिखा था, मैं पढ़ाई कर रही थी और मेडिकल लाइन ज्वाइन करने लिए मुझे कहा, घर में कहने लगे, तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, 67 की बात है ये, बाबा घर में सब कहते हैं तो MBBS करो, तो बाबा मैं क्या करूं। बाबा से पूछते थे जो भी प्रश्न होता था, कोई प्रॉब्लम बाबा को लिखते थे तो बाबा जवाब भी देते थे, बच्ची बाबा राय देते थे, बच्चे ये करो। तो मुझे बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची बाबा चाहते हैं कि तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, ये बाबा ने उस समय पत्र में लिखा था, रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, माना MBBS नहीं करो, MBBS नहीं करो। तो मैंने बिल्कुल निर्संकल्प छोड़ दिया कि मुझे MBBS करनी है और फिर मैं BSc की, तो और लास्ट ईयर था BSc का और बाबा अव्यक्त हो गए। तो मैंने बाबा को उस समय कहा, बाबा आप चले गए और मैंने आपकी आश पूरी नहीं की, क्योंकि आपने मेरे में आश रखी, बाबा की आश है तो रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, वो तो की नहीं, तो पढ़ ही रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ मैं, तो बाबा मैंने आपकी आश पूरी नहीं की। तो उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे अव्यक्त बाप दादा मेरे आगे खड़े हैं फरिश्ता, और बाबा मुझे मेरे हाथ सिर पर हाथ रख कर कह रहे, बच्ची तुम बाबा की आश पूरी करोगी, तो बाबा की आश पूरी करोगी, बाबा गए नहीं है। तो मैं तो बस उसी समय जैसे मैं ठंडी हो गई, नहीं तो इतना मैं वो जैसे टांगे वो कांप रही, नहीं जैसे कोई डर डर के मारे होता है, तो बस अभी खत्म, अभी ये आकाश फटेगा, धरती हिलेगी और ये सब होगा। और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे आथर दी, मतलब कहने का भाव है कि बाबा अव्यक्त हुए और फिर कैसे संदेशियों ने कहा कि बाबा वतन से आकर बच्चों से मिलेंगे। तो देखो अव्यक्त बाप दादा का पाठ चला, तो मानो कि जो भी ड्रामा में है वो सब कुछ कल्याणकारी है। इतनी बाबा की सेवा हो गई, साकार मूल्यों में आप सुनते कितनी बातें बाबा की सुनते, बच्चे घर घर में सेंटर होगा, गीता पाठशाला होगी, गली गली में होगी, क्यों लगेगी, ये होगा ये होगा। उस समय हम क्या सोचते थे, बाबा तो कहते थे पता नहीं क्योंकि इतने बच्चे थोड़े थे बाबा के, सेंटर भी कोई लिमिटेड ही थे बाबा के होते हुए। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो देखो, तो फरिश्ता भी बनना है और फिर फरिश्ता बनना है, तो बाबा कैसे फरिश्ता बनते गए। दादियों को भी हमने देखा, न्यारी प्यारी होती गई, बिल्कुल जैसे दादी, अभी दादी तो इतनी एक्टिव थी, सारा यज्ञ संभाला दादी जी ने, लेकिन लास्ट के जो एक साल था, एक डेढ़ दो साल, बिल्कुल धीरे 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 अव्यक्त होती गई और इतनी दादी की ऊंची स्थिति बन गई, जो दादी के सामने जाते थे तो लगता था कि दादी से वो दृष्टि ले रहे, कुछ भी बोले नहीं, पहले तो दादी से बात करते थे, मतलब इतना जैसे बिल्कुल दादी हल्की थी, सबसे मिलती जुलती थी, पर बाद में एकदम न्यारी होती गई। तो ये दादी से पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, सब दिमाग को ताला लग गया और बस दादी से दृष्टि ले, बस दृष्टि ले, और दादी बस दो शब्द जो दादी कह रहे बस वही सुनना है बस। तो इसी स्थिति से हमने दादी जी को फरिश्ता बनते देखा, ब्रह्मा बाबा को भी फरिश्ता बनते देखा। मनोहर दादी बहुत सुनाती थी बाबा का अंतिम दिन कैसे कोई आते थे, बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा जानते, उसका उसी समय वो लंबा लंबा बोलना बंद कर देते थे, बच्चे बाबा जानते। माना विस्तार में नहीं जाओ, जरूरत नहीं है, छोड़ो, छोड़ो तो छूटो, भूल जाओ। तो बाबा कैसे अव्यक्त होते गए, और फिर हम अभी देख रहे हैं दादी जी के अव्यक्त होने के बाद तो और सेवाएं बढ़ गई। शांतिवन देखो क्या था, दादी जी की शक्ति से इतना सारा बना, अब तो और विस्तार हो गया। ये सब कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई मनुष्य की शक्ति तो है नहीं। और फिर फरिश्ता बनेंगे तो संपन्न संपूर्ण बनेंगे, फिर घर जाएंगे। तो सब तैयार है ना घर जाने लिए, यह संगम युग बहुत पसंद है, जिनको संगम युग पसंद है घर ने अभी नहीं जाना है वो हाथ उठाओ। अच्छा है, और जिनको जो समझ घर जाना है बस वो हाथ उठाओ। अच्छा ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, संगम भी प्यारा है तो घर भी प्यारा है, फिर नई दुनिया भी प्यारी है, सब प्यारा है ना, प्यारा सब कुछ प्यारा है ना। फिर कहेंगे जो ड्रामा में, तो ड्रामा तो कल्याणकारी है, पर ये जब बुद्धि में रखते, परंतु कोई ये नहीं सोचे आज सब थोड़ी पास विद ऑनर बनेंगे, आज भी बाबा ने मुरली में कहा सबको थोड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी, सबको थोड़ी मिलेगा, तो इतने सारे थोड़ी आएंगे, 108 कितने होंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, बाबा ने विदेशियों से पूछा कि कौन 108 के उस माला में आएंगे, तो सारे कम से कम 600-700 भाई बहने बैठे थे, तो विदेशी, तो सब ने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा 108 की माला में इतने सारे आ जाएंगे, तो बाबा ने कहा हाँ क्यों नहीं, आपके मुख में गुलाब, बाबा लड़ियां बना देंगे। 108 में वो लड़ियां डाल देंगे ताकि सब उसमें आ सके। लेकिन कहने का भाव है, फिर बच्चे कहते बाबा सब तो आएंगे नहीं, और बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, तुम पुरुषार्थ तो करो, पुरुषार्थ तो करो, हिम्मत रखो, बाबा मदद करेगा, पर उसके लिए क्या करो वही बाबा बताते रहते हर मुरली में। तो फिर घर जाना है, फिर देवता बनना है। तो क्या है उद्देश्य, देवता बनने तक ये सब पड़ाव है, इन पड़ावों से गुजरना होगा। तो अभी कहाँ पहुंचे हैं, कितना दूर, कितनी दूर है मंजिल देखना है ना। तो अगर मंजिल दूर है तो पुरुषार्थ कैसा करना पड़ेगा, बहुत तेज, बहुत तेज पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ आप स्पीड बढ़ाने आए हो ना अपने पुरुषार्थ की, तो इसीलिए आप सबको मधुबन की भट्टी में बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी देखो 7 बज गया। ओम शांति। यज्ञ भूमि पे बैठकर जब यज्ञ का इतिहास सुनते हैं तो आप सब उस कालखंड में पहुंचे थे या आज को देख रहे थे। दीदी ने इतना सुंदर उस यज्ञ के इतिहास को सुनाया, हम सब उड़ान भर के सुन नहीं रहे थे, हम सब देख रहे थे ना, क्योंकि जून मास मम्मा के अव्यक्त बनने का मास है। तो आप सभी भी जून मास में आए हो, एक और वरदान आप सबको प्राप्त हुआ है, मम्मा के जीवन का भी आपने अनुभव किया, मम्मा के तपस्या के वाइब्रेशंस को भी आप अनुभव कर रहे हैं। दीदी ने बहुत सुंदर उद्देश्य, उस उद्देश्य को पाने के छोटे छोटे लक्ष्य हम सबके सामने रखा, और ऐसी आदरणीय दीदी जी का हम दिल से एक हाथ की ताली बजा करके, है ना, आप सबको देखो, दीदी को वरदान है, दीदी को बाबा के यज्ञ के इतिहास के बारे में इसे जबान पे चढ़ा हुआ। मनोहर दादी जी थे, उसके पश्चात हमने जब जब दीदी के मुखारविंद से यज्ञ के इतिहास को सुना है, हम सब अनुभव करते हैं।
तो ऐसा सौभाग्य हमें मिला है मम्मा बाबा की पालना पाए हुए आदरणीय दीदी जी, और एक विशेष रतन भी हमारे बीच में है। आप सबके कटक की जो दीदी है उनको भी मम्मा बाबा ने तराशा है ऐसे अनमोल रतन। और भी कोई बैठे हैं भैया मम्मा बाबा के समय के कोई है? दीदी कोई भी नहीं है, आप ही दो विशेष रतन। अच्छा, उड़ीसा में ज्ञान ही 73 में गया है, लेकिन बाबा के एग्जाम्पल मम्मा बाबा की दीदी ने भी पालना पाई है वो उनके दृष्टि से ही दिखाई देता है। और साथ साथ हमारी सुलोचना बहन भी और दीदी भी, आप ऐसी महान विभूतियों से पालना भी पाने वाले विशेष रतन भाग्यशाली हो। अब हम सभी मधुबन पहुंचे हैं। मधुबन माना मधुर मधुर, तो मधुबन के मधुर मधुर वाणी ग्रुप से आप सबके स्वागत के लिए स्पेशल हमारे हल्दर भाई जी एवं साथी भाई निरंजन भाई जी, दोनों भाई आप सबके स्वागत के, हल्दर भाई बताए दीजिए, हल्दर भाई और निरंजन भाई दोनों आपने दिल के उद्गार लेकर के पहुंचे, क्योंकि मधुबन भी आप सब आत्माओं का आह्वान करता रहता बाबा के विशेष रत्नों का, वो भी दिल बिछा करके एक एक रतन बाबा की तपस्वी आत्माएं आएंगे तो उनके दिल के उद्गार उनके गीत के माध्यम से भावों के माध्यम से हम सुनेंगे। मधुर वाणी ग्रुप की ओर से
ओम शांति। दीदी को सुन रहे थे जैसे लगा कि हम साकार में बैठे हैं, बाबा से मम्मा से दृष्टि ले रहे हैं। ये मौका किस्मत वालों को मिलते हैं, तो इसलिए अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शुभागमन में चहकांगन महका ये परिवेश, हाँ महका ये परिवेश, हर्षित है ये दशो दिशाएं ओ दीदी कमलेश। दीदी ने कहा सफल तपस्वी बनना है, सफल तपस्वी बनना है तब बाबा ने यहाँ बुलाया, मीठी प्यारी मम्मा का भी जून महीना आया, बाबा मम्मा के अरमा को, बाबा मम्मा के अरमा को आओ करें साकार, बड़ी दीदी कमलेश पधारी झूमे मन संसार, झूमे मन संसार, झूमे मन संसार।
मधुबन है इस बार तप का करके प्रबल विचार, आया मधुबन है इस बार तप का करके प्रबल विचार, लाई सुलोचना बहना प्यारा कटक प्रभु परिवार, बड़ी दीदी कमलेश पधारी झूमे मन संसार, प्यारी दीदी कमलेश पधारी झूमे मन संसार, आपका स्वागत है सत्कार सागर, स्वागत है सत्कार, आपका स्वागत है सत्कार सागर, स्वागत है सत्कार। धरती से बहती महानदी के तीरे, हाँ मेरी मंगला में बचते नित्य दिन राज मजीरे। उत्कल की धरती से बहती महानदी के तीरे, खांजिर मंगला में बजते नित जुगनू आज मंजीरे। दादी सम कमलेश दीदी लुटाती बेहद प्यार, आया मधुबन आया मधुबन है इस बार, तपका करके प्रबल विचार लाई सुलोचना बहना, प्यारा कटक प्रभु परिवार। गरे गरे गगरे सा महातीर्थ मधुबन में आकर पूर्ण मनोरथ कर ले, तपोभूमि में करके तपस्या इतनी शक्ति भर ले। महातीर्थ मधुबन में आकर पूर्ण मनोरथ कर ले, तपोभूमि में करके तपस्या इतनी शक्ति भर ले। जस बहनों संग बनाए भट्टी ये यादगार, आया मधुबन आया मधुबन है इस बार, तपका करके प्रबल विचार लाई सुलोचना बहना, प्यारा कटक प्रभु परिवार। बाबा मम्मा करते आज भी मधुबन में सूक्ष्म पालना, शशि दीदी शीलू दीदी जी देती दादी की वासना। बाबा मम्मा करते आज भी मधुबन में सूक्ष्म पालना, शशि दीदी शीलू दीदी जी देती दादी की वासना। 14 वर्ष की भट्टी लिए मिल चार दिन उपहार, आया मधुबन आया मधुबन है इस बार, तपका करके प्रबल विचार लाई सुलोचना बहना, प्यारा कटक प्रभु परिवार। बड़ी दीदी कमलेश पधारी झूमे मन संसार, प्यारी दीदी कमलेश पधारी झूमे मन संसार, आपका स्वागत है सत्कार, सादर स्वागत है सत्कार, आपका स्वागत है सत्कार, सादर स्वागत है सत्कार।
धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर भाई, निरंजन भाई, इतने प्यार भरे मोतियों से सबके गले में कौन सी माला, स्वागत की माला पिर। अच्छा अच्छा, दीदी जी कह रहे हैं हमारे परिचय के लिए, शरीर का नाम राधा बहन है, पिछले 42 वर्षों से बाबा के इस ज्ञान में चलते हैं, जन्म स्थान कर्नाटक है लेकिन कर्म भूमि उत्तर भारत रहा, पिछले 35 वर्षों से लखनऊ में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखनऊ भी मम्मा बाबा की धरनी है, आदरणीय हमारी गुलजार दादी जी की धरनी है, तो वहां रह करके सौभाग्य मिला है बाबा की सेवा करने का, और उससे भी पद्मा पदम भाग्य है, भट्टी तो करने आते हैं लेकिन इस बार पांडव भवन में आप सब से मिलने का, इस भट्टी के लिए दीदियों ने हमें एक मौका दिया है, तो सिर्फ आपकी भट्टी ने, मैं तो कहती हूँ मैं अहोस सौभाग्यशाली हूँ, समाज के संसार के इस परिवर्तन की वेला में बाबा ने एक हमें फिर से मौका दिया है भट्टी में तपने का।